अध्याय न घ ओसवाल्ड स्पेंगलर स्पेंगलर 1880 टू 1936 जीवन वृत्त। प्रसिद्ध इतिहासविद ओसवाल्ड स्पेंगलर का जन्म 29 मई 1880 ईस्वी में जर्मनी के हार्ट प्रांत के ब्लैकेनबर्ग नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता पोस्ट ऑफिस विभाग के एक अधिकारी थे। इन्होंने म्यूनिख बर्लिन तथा हाले विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। अध्ययन विषयों में उन्हें गणित और विज्ञान में विशेष रुचि रही। साथ ही साथ उन्होंने इतिहास कला और दर्शन का भी गंभीर अध्ययन किया। 7 वर्ष तक ड्यूसलडोर्फ हामबुर्ग और म्यूनिख में शिक्षण कार्य करने के पश्चात 1911 ईस्वी में विश्वविद्यालय जीवन से पृथक हो गए। राजनैतिक जीवन में भी उन्होंने विशेष रुचि ली और देश की समकालीन समस्याओं से संबंधित अनेक छोटी पुस्तिकाएं और पत्रक विभिन्न विषयों पर लिखा। रचनाएं सन 1918 में उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पश्चिमी जगत का पतन द डिक्लीन ऑफ द वेस्ट का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। यह ग्रंथ इतना लोकप्रिय हुआ कि इसकी 90,000 प्रतियां छपी और बिक गई। श्री मानफ्रेड श्री येतर ने अपने ग्रंथ देयर स्ट्राइथ स्पेंगलर में स्पेंगलर के ग्रंथ के 400 आलोचकों के मत उद्धृत किए हैं। स्पेंगलर के अन्य ग्रंथ यार देयर एंथ साइदुंग निर्णय का वर्ष प्रजाशक्ति और समाजवाद मनुष्य और वैज्ञानिक पद्धति तथा 1936 ईस्वी में उनके भाषणों का संग्रह प्रकाशित हुआ। स्पेंगलर के ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स फ्रांसिस एटकिंसन ने 1926 और 1928 में दो भागों में प्रकाशित किया। एडविन एफ डेकिन ने टुडे एंड डेस्टिनी शीर्षक रचना में स्पेंगलर के ग्रंथों और लेखों के चुने हुए उदाहरण संग्रहित किए। ई एच गोडर्ड और पी ए गिवंस की रचना सिविलाइजेशन एंड सिविलाइजेशंस लेसंस में स्पेंगलर के सिद्धांतों की विशद चर्चा मिलती है। एच स्टुअर्ट ह्यूगर्स का ग्रंथ ओसवाल्ड स्पेंगलर एवं क्रिटिकल एस्टीमेट 1952 में स्पेंगलर के सिद्धांतों का विस्तृत विवेचन मिलता है। ए एल राटसे की द यूज ऑफ हिस्ट्री 1947 में स्पेंगलर की सारगर्भित मीमांसा पृष्ठ संख्या 103 है। स्पेंगलर के जीवन चरित्र के विषय में विल ड्यूरेंट की एडवेंचर्स इन जीनियस नामक कृति दृष्टव्य है। ग्रेट मैन ऑफ लिटरेचर के नाम से इनका नया संस्करण छपा है। पी ए सारोकिन ने सोशल फिलोसॉफीज ऑफ एन एस ऑफ क्राइसिस के पृष्ठ 962 से 992 पर स्पेंगलर के विचारों की विस्तृत टीका की है। इतिहास दर्शन स्पेंगलर मूलतः वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे, अतः उनका ऐतिहासिक चिंतन भी वर्गीकरण विश्लेषण और नियम निर्धारण के सिद्धांतों पर आधारित था। यह वैज्ञानिक पद्धति को अपने प्रकृति विज्ञान से प्राप्त किया था, अतः उनका ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दर्शन चिंतन प्रकृति के उत्थान विकास और विनाश के अनुसार ही संस्कृतियों का भी उद्भव विकास और पतन होता है। वैज्ञानिक चिंतन को दर्शन में प्रवेश करके समस्त विश्व को प्रकृति और इतिहास इन दोनों स्वरूपों में स्वीकार करते हैं। विश्व का जो स्थिर दृश्य और मूर्त निर्मित रूप है वह प्रकृति रूपी विश्व वर्ल्ड एज नेचर है और इसका जो गतिमान प्रक्रियात्मक आमूर्त निर्माण रूप है वह इतिहास रूपी विश्व वर्ल्ड एज हिस्ट्री है। विश्व काल के अंतराल में व्याप्त है। देश की प्रवृत्ति कारणवाद है और काल की प्रवृत्ति नियतवाद है। अतः प्रकृति में हम कार्य कारण की परंपरा को ढूंढ सकते हैं, किंतु इतिहास में केवल गति नियति और प्रक्रिया है। विश्व इतिहास एक अंतहीन निर्माण एवं परिवर्तन का क्रम है। जिसमें सजीव रूप अद्भुत रूप में बनते बिगड़ते रहते हैं। यह निर्माण और परिवर्तन प्रकृति एवं सावयवी पौधों एवं जीव जंतुओं के समान इतिहास में संस्कृतियों का भी होता है, परंतु यह परिवर्तन रेखीय न होकर चक्रीय होता है। इतिहास में संस्कृति की अवधारणा 20वीं सदी की परिवर्तित परिस्थितियों के कारण इतिहास लेखन के क्षेत्र में इतिहास के अध्ययन का विषय राष्ट्र, जाति अथवा कोई सामाजिक संस्था न होकर पूरी संस्कृति है। इसका प्रवर्तन सर्वप्रथम स्पेंगलर ने किया। स्पेंगलर के अनुसार इतिहास उन विविध एवं पृथक पृथक इकाइयों का अनुक्रम है जिन्हें हम संस्कृति कहते हैं। इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है। यह एक प्रकार का जीवन शास्त्र है। इसके नियम अटल तथा अलंघ्य हैं। मनुष्य इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। इतिहास के अध्ययन का केंद्र राष्ट्र या जाति न होकर संस्कृति होनी चाहिए। इस प्रकार स्पेंगलर के द्वारा इतिहास के स्वरूप वर्णन में संस्कृतियों की जीवों से तुलना करना विचारोत्तेजक है। भूतकालीन और भावी इतिहास सभी का मौलिक विषय संस्कृति के स्पेंगलर के अनुसार जिस प्रकार प्राकृतिक जगत है उसी प्रकार एक इतिहास जगत भी है, अर्थात कार्यकारण के आधार पर घटित ऐतिहासिक घटनाओं का संयोजन और कुछ न। पृष्ठ संख्या 104 होकर दूसरे रूप में प्रकृति विज्ञान का एक टुकड़ा है, परंतु प्रकृति को जहाँ वैज्ञानिक तरीके से समझा जा सकता है वहाँ इतिहास को भाव द्वारा। इतिहास में संस्कृतियों का ही अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि मानव विकास एक असीम प्रवाह है जिसके अपार विस्तार पर अनंत तरंग मालाएं क्रीड़ा करती हैं और अपने शाश्वत नृत्य में अदृश्य हो जाती हैं। इसी प्रकार मानव प्रवाह के तल पर महान संस्कृतियों, जातियां, कबीले, पीढ़ियां, वंश के तरंग वृत्त चलते रहते हैं जो उठते गिरते विलीन हो जाते हैं। संस्कृति और सभ्यता। स्पेंगलर ने संस्कृति के जीवन क्रम को वनस्पतियों के जीवन क्रम में समान स्वीकारा है, जो ऋतुओं के परिवर्तन बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर, हेमंत के अनुरूप चलती रहती हैं। इस क्रम की प्रथम तीन अवस्थाओं को स्पेंगलर ने संस्कृति का नाम दिया है और बाद की तीन अवस्थाओं को सभ्यता की संज्ञा प्रदान की है। संस्कृति उत्थान बसंत, ग्रीष्म, वर्षा का काल है और सभ्यता का पतन, ह्रास, क्षय तथा जड़ता, शरद, शिशिर, हेमंत का काल है। संस्कृति के इतिहास का उपसंहार सभ्यता में होता है। स्पेंगलर के शब्दों में सभ्यता एक परिसमाप्ति है, निर्माण क्रम के पश्चात की निर्मित वस्तु स्थिति है, अर्थात जीवन के बाद की मृत्यु है और प्रसार के बाद का जमाव है। सभ्यता में कृत्रिमता, बौद्धिकता, शीतलता, शांति, समानता, सार्वजनिकता तथा नागरिकता आदि के भाव प्रमुख होते हैं, जबकि संस्कृति की स्थिति इससे भिन्न होती है। सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण राष्ट्र और समाज का दो विभिन्न भागों में विभक्त होना होता है। ये दो भाग सार्वजनिक नगर और प्रांत होते हैं। नगर शोषक होते हैं। नगरों में अर्थ प्रधान, अहिकता परक, विश्वासहीन, भोग बहुल, संघर्ष मुक्त और प्रदर्शक प्रिय जीवन का नग्न नृत्य होता है। इसके विपरीत प्रांत शोषित, दरिद्र, दुखों, अंधविश्वासी, निरीह, निश्चेष्ट जनता पौधों की तरह भूमि से चिपक कर शोषण, संताप और आक्रमण को सहन करती है। संस्कृति और सभ्यता का विरोधाभास स्पेंगलर के दर्शन का केंद्र स्थल है। संस्कृति की विकास अवस्थाओं में समाज गांवों और कस्बों में बटा होता है जिनमें कोई भौतिक भेद नहीं होता। समाज का नियंत्रण एक अभिजात वर्ग के हाथ में होता है जो अपनी मातृभूमि से पूर्णतः सन्नद्ध रहता है। इसके दृष्टिकोण में स्थानीयता के साथ साथ प्रसरणशीलता भी होती है। इसकी कला में वैयक्तिकता और भावुकता व्याप्त रहती है, परंतु नगरों में जातीय सम्मिश्रण संस्कृति की वैयक्तिकता को समाप्त कर देता है और सार्वजनिकता की प्रवृत्ति की प्रेरणा से संस्कृति और मातृभूमि का संबंध विच्छिन्न हो जाता है। जनतंत्र और समाजवाद बुद्धिवादी दर्शन और रीति प्रधान कला की प्रधानता हो जाती है। अभिकर्ता और यांत्रिकता की प्रकृति बढ़ जाती है। सर्वभौतिकता और बुद्धिवाद। पृष्ठ संख्या 105। ऐसा जल प्लावन है जो संस्कृति की सरिता को आत्मसात और विनिमाजित कर लेता है। संस्कृतियों का काल। स्पेंगलर ने ही संस्कृतियों का विशेष अध्ययन किया है। मिस्री, हिंदी, अरबी, चीनी, अयोगिकता, क्लब सकल, फाउसटियन, यूरोपियन हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने बाबुली और मैक्सिकन संस्कृतियों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने एक रूसी संस्कृति का भी संकेत किया है, परंतु केवल प्रथम छह संस्कृतियों को वैज्ञानिक दृष्टि से सामयिक माना है। मिस्री संस्कृति चीनी युग में उत्पन्न हुई और प्राचीन वंशकाल 1900 से 2400 बीसी में विकसित हुई। 1250 से 1680 तक प्रौढ़ावस्था रही। 1680 के निकट यह सभ्यता में परिवर्तित हो गई और धन, जनतंत्र, अधिनायक, शाही सार्वजनिकता आदि के क्रम में विकसित होकर विलुप्त हो गई। अरबी संस्कृति लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी में उत्पन्न हुई। 800 ईस्वी अर्थात मोहम्मद और हारून अल रशीद के समय तक इसका परिपाक 9वीं-10वीं शताब्दियों में सुल्तान वंशों के आगमन से सभ्यता में बदल गई। चीनी संस्कृति आरंभिक युग 1300 से 800 ईसा पूर्व में विकसित हुई। उत्तर युग 800 से 500 ईसा पूर्व में परिपक्व हुई और 480 से 300 से जब राज्यों का संघर्ष आरंभ हुआ सभ्यता में पदार्पण करने लगी। अपोलोनियन संस्कृति डोरिक युग 1000 से 650 ईसा पूर्व में पनपी। अयोनिक युग 650 से 300 ईसा पूर्व में समुन्नत हुई और 300 से 100 ईसा पूर्व में सिकंदर और हेलेनिज्म के समय से सभ्यता बन गई। फाउसतियन पश्चिमी यूरोपीय संस्कृति गोथिक युग 908 से 1500 ईस्वी में पकी और प्रौढ़ हुई तथा 1800 ईस्वी से अर्थात नेपोलियन के युग से सभ्यता आ गई जाती है, जिसकी अवधि अनिश्चित है। हिंदी, चीनी एवं अरबी संस्कृतियां सभ्यता के युग में पहुंचकर जड़ और मृत्यु हो चुकी, किंतु इसके मृत शरीर अब तक विद्यमान है। बहुत से विशाल वृक्ष सूख जाते हैं और निर्जीव हो जाते हैं, किंतु इनकी शाखाएं आकाश की ओर उठी रह जाती हैं। यही दशा इन संस्कृतियों की भी है। स्पेंगलर ने संस्कृति को चार कालों के संदर्भ में देखा है। संस्कृति का सर्वप्रथम काल उसका बसंत काल। इसे वीको के दैवी युग के समकक्ष माना जा सकता है। यह धर्म निष्ठा का काल है। इस युग के मनुष्य धर्म भीरु हैं, जिनमें धार्मिक चेतना का विकास होता है। जैसे भारत में यह युग वैदिक संहिताओं का काल है और यूनान में ओलंपिक देवताओं का। इसके बाद संस्कृति के जीवन का दूसरा काल ग्रीष्म काल है अर्थात संशय का युग, जबकि सांस्कृतिक आत्मबोध के साथ साथ एक आलोचनात्मक मनोभाव का भी जन्म होता है। संस्कृति के इस काल में विशिष्ट दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है। यह भारतीय संस्कृति का वह काल है जब उपनिषद लिखे गए और फाउस्टियन संस्कृति में यह लूटर और डेकार्ट का युग था। इसी समय कला के क्षेत्र में पृष्ठ संख्या 106 यूनान में ओरिक शैली के पश्चात क्लासिकल और पश्चिम में गोथिक शैली के पश्चात बैरोक शैली का विकास होता है। संस्कृति का तीसरा काल पतझड़ का है, जिसमें संस्कृति अपने प्रौढ़ता को प्राप्त होती है। यह बौद्धिक पराकाष्ठा का युग है, जिसका मूलाधार तर्क था। यही कारण है कि इस समय धर्म को बौद्धिक दृष्टिकोण से देखा गया। इस समय जहां भारत में बौद्ध धर्म का उदय हुआ, तो यूनान में सुक्रात और प्लेटो ने तत्कालीन दर्शन को अपने तार्किक संवादों से भर दिया। पश्चिम में यही युग बौद्धिक तर्क चेतना का है। इसी युग में यहाँ पर अनेक विश्वकोश लिखे गए, जो विशुद्ध बौद्धिक दृष्टिकोण पर आधारित थे। संस्कृति का चौथा अंतिम काल शीतकाल या महानगरीय सभ्यताओं के उदय का काल है। इस युग में संस्कृति न केवल अश्मीभूत होकर निर्जीव हो गई, बल्कि वह अपने प्रतिरूप सभ्यता में प्रत्यावर्तित हुई। इस युग में संशयवादी दर्शन और भौतिकवाद की प्रधानता रहती है। विज्ञान के विभिन्न संप्रदायों के जन्म से धार्मिकता का पतन होता है। इस युग में जनता के लोकप्रिय तंत्र प्रजातंत्र की परिणति कैसरवाद में होती है। संस्कृतियों का वैशिष्ट्य एवं परम प्रतीक। स्पेंगलर के अनुसार प्रत्येक संस्कृति की अपनी जीवंत विशेषता और व्यक्तिकता होती है। उसकी आत्मा की अभिव्यक्ति की विशिष्ट शैली होती है, जो आचार विचार के प्रत्येक पक्ष में प्रतिबिंबित होती है। उसी पर संस्कृति के अनेक उपरूप स्थित होते हैं और परम प्रतीक का निर्माण संस्कृति के जागरण के समय होता है और जागृति के क्षण में दिग्बोध परम प्रतीक का निश्चय करता है। सांस्कृतिक जागृति और विद्यमानता का अंतराल तथा समय के आंतरिक अर्थ ग्रहण से एक गहरी एकात्मकता है। यह परम प्रतीक ही संस्कृति की विशिष्ट शैली और ऐतिहासिक आकार ग्रहण करने की संभावनाएं प्रदान करता है। स्पेंगलर विस्तार को संस्कृति का परम प्रतीक मानता है और परम प्रतीकों में अनेकता है। अंतर विस्तार के अनुभव से ही विश्व आकार ग्रहण करता है और अनुभव के द्वारा ही विश्व को समझा जा सकता है। किसी विशिष्ट मूर्ति की संस्कृति के आत्मबोध के जागरण के क्षणों में ही परम प्रतीक का निश्चयन होता है और यही क्षण इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं में संस्कृति का जीवन क्रम निश्चित होता है। स्पेंगलर के अनुसार परम प्रतीक प्रत्येक मनुष्य समुदाय की मनस्थिति से सक्रिय रूप से एकाब्ध है और उसी से प्रत्येक जीवन की अभिव्यक्ति की शैली निश्चित होती है। यह राज्य के आकार, धार्मिक मिशन, संप्रदाय, नैतिक आदर्शों, चित्र, संगीत, कविता के आकारों और मौलिक वैज्ञानिक विचारों में अंतर्निहित होता है। मिश्री संस्कृति की विशेषता अमरत्व और स्थायित्व की खोज है और उसका व्यापक प्रतीक पाषाण और उससे निर्मित भवन और मूर्तियां हैं। हिंदी संस्कृति की विशेषता अनंत में विलीन होना है, पृष्ठ संख्या 107, और इसका व्यापक प्रतीक शून्य, निर्माण, मोक्ष और इनकी प्राप्ति के धर्म है। अरबी संस्कृति की विशेषता सत्य और असत्य, ज्योति और तमस द्वंद्व है और इसका व्यापक प्रतीक विश्व की गुह्यात्मक व्यंजना है, जो गोल गुंबजों में प्रतिबिंबित होती है। चीनी संस्कृति की विशेषता एक प्रकार का बहुसोचक प्राकृतिक क्रम और विधि है। अपोलिनियन संस्कृति की विशेषता मूर्त दृश्य और शारीरिक रूप की सतर्कता है और इसका व्यापक प्रतीक मूर्तिकला, मानव चित्रण, ज्यामितीय तथा सौंदर्य प्रेम है। फॉस्टियन संस्कृति की विशेषता विकास और निर्माण की चेतना, गतिक्रिया और काल की सजगता तथा अनंत, असीम और अमूर्त का भाव है। इसके व्यापक प्रतीक संगीत, दृश्य, चित्रण, विशाल गभिक गिरिजे और उनके महान त्रिकोणकार गवाक्षों में जड़े हुए हैं। इसी प्रकार रूसी संस्कृति का व्यापक प्रतीक असीम समतल है। पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकती है तब संस्कृति ढलते हैं। पूर्ण अभिव्यक्ति हो चुकती है तब संस्कृति ढलने लगती है और सभ्यता की अवस्था में पहुंचकर सार्वजनिक इतिहासहीन मानव में विलीन हो जाती है। वर्तमान सभ्यता का पतन इतिहास संस्कृतियों की जीवन लीला है। यह एक प्रकार का जीवन शास्त्र बायोलॉजी है। इसके नियम अटल और अलंघ्य हैं। मनुष्य उनमें कोई अदल बदल नहीं कर सकता। जब संस्कृति सभ्यता की अवस्था में पहुंचकर ह्रास और क्षय के पथ पर चलती है तो मनुष्य अनायास इसका अनुसरण करने लगते हैं। वर्तमान पश्चिमी संस्कृति बहुत दिन हुए सिद्ध सभ्यता की अवस्था में पहुंच चुकी है। हम इसके भविष्य पर शोक प्रकट कर सकते हैं किंतु इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। संगीत, चित्रण और वास्तुकलाओं का युग बीत चुका है। वर्तमान संतति का कर्तव्य है कि वह समय की गति को पहचानकर कविता के स्थान पर यंत्रों पर ध्यान दे और ज्ञान शास्त्र के बजाय राजनीति में दत्त चित्त हो, अन्यथा उसके प्रयत्न विफल रहेंगे। उसका भविष्य निराशामय है। हमने स्पेंगलर के इतिहास दर्शन का संक्षिप्त परिचय देने की चेष्टा की है। वैसे तो इन्होंने इतने विषयों की चर्चा की है कि उन सब का परिचय देने के लिए एक बड़ा ग्रंथ चाहिए। यहाँ केवल कुछ बातों का उल्लेख किया जा सका। इससे तो स्पष्ट है कि स्पेंगलर का दर्शन गेटे के जीवन दर्शन पर आधारित है। बारंबार उन्होंने इस महाकवि के विचारों को दोहराया है। उनका ग्रंथ फाउस्ट के उद्धरणों से भरा पड़ा है। स्पेंगलर से मिलते जुलते विचार रूसी विचारक दानिलेवस्की ने 1869 में व्यक्त किए थे, किंतु स्पेंगलर ने उनका उल्लेख तक नहीं किया है। पृष्ठ संख्या 108। स्पेंगलर का प्रभाव। स्पेंगलर के विचारों ने वर्तमान इतिहास दर्शन को बहुत प्रभावित किया है। टायनवी के सिद्धांतों पर उनकी स्पष्ट छाप है। उनकी यह मान्यता कि इतिहास एक सूत्रीय नहीं है और प्राचीन काल और अर्वाचीन काल का विभाजन भ्रामक है, टायनवी को स्वीकार है। वे भी स्पेंगलर की तरह यूरोपीय इतिहास को यूनानी, रोमन और अर्वाचीन यूरोपीय संस्कृतियों की जीवनचर्या में विभक्त करते हैं। उनका सभ्यताओं का विभाजन स्पेंगलर की विचारधारा पर आधारित है। सभ्यता सिविलाइजेशन शब्द की परिभाषा के विषय में इन लेखकों में अवश्य मतभेद है, किंतु इतिहास का संस्कृति परक विभाजन दोनों को मान्य है। साथ ही साथ दोनों लेखक यह भी मानते हैं कि संस्कृति या सभ्यता के जीवन में उत्थान पतन होता है और अंत में उनका क्षय हो जाता है। ट्वायन भी इतना संशोधन अवश्य करते हैं कि सभ्यता क्षीण होने पर दूसरी सभ्यता को जन्म देकर उसमें अवतीर्ण हो जाती है और इस प्रकार इतिहास का क्रम बना रहता है। जिन युगों में स्पेंगलर ने संस्कृति का पतन और ह्रास निश्चित किया है, लगभग उन्हीं में ट्वायनबी ने इस प्रक्रिया का प्रारंभ माना है। यह सत्य है कि ट्वायनबी ने स्पेंगलर के अटल और कठोर नियतिवाद का तीव्र विरोध किया है, किंतु जैसा हम आगे चलकर देखेंगे, कि ट्वायनबी का विकास और क्षय की प्रक्रिया का सिद्धांत भी नियमित रूप से नियतिवाद की ओर संकेत करता है। जिस प्रकार स्पेंगलर मानते हैं कि संस्कृति की जीर्णावस्था में एक प्रकार की धार्मिकता है, जिसे वे द्वितीय धार्मिकता कहते हैं, उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार ट्वायनबी भी मानते हैं कि सभ्यता के पतन और ह्रास की अवस्था में उच्च धर्मों का आविर्भाव होता है। इसमें संदेह नहीं है कि धर्म के विषय में स्पेंगलर और ट्वायनबी के विचारों में पर्याप्त अंतर है। स्पेंगलर ईसाईयत, महायान, कन्फ्यूशियसी, सूफी आदि धर्मों को पतन का प्रतीक समझते हैं और ट्वायनबी इनको सभ्यताओं का संगम और उद्भव मानते हैं। तथापि यह विचार कि ये धर्म सभ्यताओं की पतनावस्था में प्रादुर्भूत हुए, दोनों को मान्य है। इस प्रकार हम देखते हैं कि स्पेंगलर की विचारधारा का ट्वायनबी पर गहरा प्रभाव पड़ा है और इसने पाश्चात्य चिंतन पद्धति को नवीन दिशा प्रदान की है। स्पेंगलर के विषय में यह आरोप लगाया जाता है कि उनके विचार प्रथम महायुद्ध में जर्मनी की पराजय के निराशाजनक वातावरण को प्रतिबिंबित करते हैं, किंतु स्पेंगलर ने स्वयं लिखा है कि 1911 में उनके विचार परिपक्व हो चुके थे। उस समय जर्मन निराशा का कोई प्रश्न ही नहीं था। वस्तुतः उनकी कृति में नियतिवाद का जो वातावरण मिलता है, वह पाश्चात्य संस्कृति की वर्तमान अवस्था की स्वाभाविक उपज है। टॉमस मान के उपन्यासों में भी इसकी झलक मिलती है। मार्क्सवादी दर्शन भी बहुत कुछ इससे ओतप्रोत है। वस्तुतः मानव विषयों को कठोर वैज्ञानिकता के दृष्टिकोण से देखने से ऐसी ही विचारधारा बन जाती है। पृष्ठ संख्या 109। स्पेंगलर के दर्शन और आलोचनात्मक समीक्षा। स्पेंगलर के बहुत से विचार और सिद्धांत अत्यंत सारगर्भित हैं। इतिहास की गति प्रधान प्रक्रिया और विश्व की परिवर्तनशील चर्चा के विषय में उनके विचार अतीव मार्मिक और तलस्पर्शी हैं। गेटे की जीवित प्रकृति लिविंग नेचर के महत्वपूर्ण दर्शन को ऐतिहासिक क्षेत्र में स्थानांतरित करके स्पेंगलर ने इतिहास के आंतरिक स्वरूप का अनावरण किया है, किंतु उनका संस्कृतियों के विभाजन का सिद्धांत ट्वायनबी के विचार की तरह काल्पनिक है। इस प्रकार का विभाजन विचारक की इच्छा पर निर्भर होता है। संस्कृति को जीवित शरीरी मानना भी काल्पनिक है। यह सत्य है कि मनुष्यों के सामूहिक जीवन में यथार्थता है। जब मनुष्य किसी समूह में भाग लेता है तो वह अपने व्यक्तित्व को भूलकर उसका एक अंग बन जाता है। स्पेंगलर ने फ्रेंच क्रांति के दिनों की उत्तेजक भीड़ों का उल्लेख किया जो लार्टन के नारे पर क्षण भर में पेरिस की गलियों और सड़कों पर जमा होकर क्रांति के कार्य में जुट जाया करती थी। इस प्रकार के समूहों की अलग चेतना और प्रवृत्ति हो जाती है। इसे स्पेंगलर ने जन आत्मा मास सोल कहा है। इसकी चेतना का जोर बढ़ता घटता रहता है, किंतु यह मान लेना कि इस आत्मा का शरीर भी होता है जो जन्म मरण की प्रक्रिया के अधीन होता है काल्पनिक है। स्पेंगलर संस्कृति को भी जन आत्मा और चेतना का अभिव्यक्ति मानते हैं। बहुत अंशों में यह विचार भी सही है, किंतु संस्कृति को अवयवी या शरीरी सिद्ध करने का प्रयास सफल नहीं होता है। सामूहिक चेतना के होते हुए भी मनुष्य की वैयक्तिक चेतना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। यद्यपि वैयक्तिक चेतना के निर्माण में सामूहिक चेतना का बड़ा भारी कार्य होता है, फिर भी इसकी एक विशिष्टता होती है कि जो इसी तक सीमित होती है। यह ठीक है कि बहुत वैयक्तिक चेतना सामूहिक चेतना के प्रवाह में विलीन हो जाती है, परंतु प्रायः अपनी विशिष्टता के अनुभूति द्वारा अपने निजत्व को प्रकट करती है। यह कहना गलत है कि जिस प्रकार से कोशा शरीर का अभिन्न भाग होती है, उसी प्रकार व्यक्ति समाज या संस्कृति का अंग होता है। वस्तुतः इतिहास की शारीरिक व्याख्या के प्रकरण में हमने इस मत की जो समीक्षा की है, वह स्पेंगलर के विषय में भी लागू होती है। संस्कृति को वनस्पति या जंतु मान लेना पूर्णतः भ्रामक है। स्पेंगलर का नियतिवाद उनके उपर्युक्त संस्कृति विषयक विचारों की उपज है। जीवन में निसंदेह नियति है, किंतु जीवन के प्रत्येक क्रिया अवयवित्व नहीं है। विशेषतः सामूहिक जीवन में एक ऐसे साहचर्य और समागम का भाव है जो अक्षुण बना रहता है। इसमें संतति और प्रवाह है। मनुष्य देश काल के अनुरूप इसमें भाग लेता है। जिस प्रकार जल का कोई रंग नहीं होता, किंतु रंग बिरंगे पात्रों में पहुंचकर इसका वैसा ही रंग दिखने लगता है, इसी प्रकार सामूहिक जीवन का शाश्वत प्रवाह विभिन्न देशों और कालों में विविध रूप ग्रहण पृष्ठ संख्या 110 कर लेता है। सामाजिक और सांस्कृतिक भेद इसी प्रकार के रूप हैं, किंतु इन सब के पीछे एकता है। स्पेंगलर का दर्शन एक दृष्टिकोण से अपूर्ण है। स्पेंगलर की संस्कृति और सभ्यता के भेद की धारणा भी भ्रामक है। सार्वजनिकता को पतन का लक्षण मानना और नागरिकता को ह्रास की अवस्था कहना अवैज्ञानिक है। यह ठीक है कि इन युगों में कुछ ऐसे संघर्ष उत्पन्न होते हैं जो समाज की एकता पर प्रहार करके इसके स्वरूप में परिवर्तन करते हैं, किंतु उनसे दुर्बलता नहीं आती, वरन शक्ति संचय होता है। पुरातत्व विशारदों ने सिद्ध किया है कि संस्कृति का जन्म ही नागरिकता अर्बेनिटी और साक्षरता लिटरेसी की प्रवृत्तियों द्वारा होगा। यदि इन प्रवृत्तियों को पतन कहा जाए तो इतिहास में सिवाय पतन के और क्या रह जाएगा। जिसे स्पेंगलर विकास कहते हैं वह तो नगण्य साही है। स्पेंगलर ने कला के विषय में सुंदर विचार प्रकट किए हैं। प्रत्येक कला अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि को अभिव्यक्त करती है, उसकी अपनी विशिष्टता होती है, किंतु साथ ही इसमें एक सार्वजनिक रसानुभूति भी होती है जो देश काल की सीमाओं का उल्लंघन करती है। यदि ऐसा न होता तो चीन के चित्रों, मथुरा की मूर्तियों, गाथिक युग के गिरजों और अब्बासी मस्जिदों की नक्काशी को आज कौन पसंद करता। स्पेंगलर प्रादेशिकता के भाव से इतने अभिभूत हुए हैं कि उन्होंने मानव एकता की प्रकृति को की सतत अवहेलना की है। यहाँ तक कि मानवता ह्यूमैनिटी को तो उन्होंने काल्पनिक और स्वप्निल बताया है। इस संबंध में उन्होंने गेटे का यह कथन उद्धृत किया है, मानवता यह एक अमूर्त भाव है। यहाँ पर मानव केवल मानव रहे हैं और रहेंगे, किंतु संस्कृति की भावना में तो मानव का व्यक्तिगत भी तिरोहित कर दिया गया है। यदि मानव के ऊपर संस्कृति का जीवन है तो संस्कृति के ऊपर मानवता का जीवन क्यों नहीं है। उपर्युक्त न्यूनताओं के रहते हुए भी स्पेंगलर की कृति विचार वर्धक और भावोत्तेजक है। इसकी भाषा शैली और अभिव्यक्ति अद्वितीय है। उपर्युक्त विवेचन से स्पेंगलर का इतिहास का स्वरूप स्पष्ट होता है कि उसका इतिहास दर्शन अत्यधिक अग्रशील है। संस्कृतियों का जन्म क्यों और कैसे हुआ होता है, इस प्रश्न का उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि उसके विचार में इसकी व्याख्या रहस्यमय है। फिर भी स्पेंगलर का विवेचन संस्कृति के जन्म की व्याख्या उसके दार्शनिक विचारों के अनुरूप ही है। स्पेंगलर की परम प्रतीक की व्याख्या उद्देश्यवादी प्रतीत होती है तथा संस्कृति के एकत्व में विश्वास भी संतोषजनक नहीं है। यद्यपि प्रतीकात्मक की दृष्टि पृष्ठ संख्या 111 से भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक है, यूनानी सौंदर्य परक और आधुनिक पश्चिमी तकनीक प्रधान है, फिर भी यूनानी संस्कृति केवल सौंदर्य परक और भारतीय केवल आध्यात्मिक ही नहीं है, उनमें और भी तत्व विद्यमान हैं। स्पेंगलर का मुख्य उद्देश्य प्राचीन क्लासिकल युग तथा आधुनिक पश्चिमी जगत के समानांतरता से पश्चिम का पतन दिखाना था। इसके लिए पश्चिमी इतिहासकारों के द्वारा उसकी कटु आलोचना की गई है, जिसमें टायनबी का नाम उल्लेखनीय है। लेकिन यहाँ पर यही कहना पर्याप्त होगा कि स्पेंगलर की विचारधारा में नैतिक जिम्मेदारी के लिए कोई स्थान नहीं है, अर्थात इतिहास क्रम में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है, जबकि इतिहास व्यक्तियों के कार्य और उपलब्धियों का लेखा जोखा है। इस दृष्टि से स्पेंगलर का इतिहास दर्शन संशयात्मक है।